प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
जिस टेक्निक के आधार से मनुष्य ने ये फैक्स सिस्टम आदि बनाए हैं, परमात्मा की टेक्निक इससे असंख्य गुना उत्तम है और सूक्ष्म है। ये एक शरीर बना रखा है, इसमें पूरी मशीन फिट कर रखी है। इसमें ऐसी मशीन भी ला रखी है कि खाना हम खाते हैं उसके अंदर से तुरंत ही वो अलग अलग ब्लड अलग बना देती है, रक्त वो जो भी जिसकी अलग अलग उसके सब तत्व बना करके वो शरीर को दे देती है और उसी अन्न के खाने से ये चलती रहती है और कोई एक्स्ट्रा इसके बिजली और पावर भी नहीं लगानी पड़ती। और फिर इसके अंदर ऐसे सिस्टम फिट कर रखे हैं कि इसमें जैसे टीवी में चैनल होते हैं, हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के पिछले रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन बोलते हैं, इसके अंदर की साइड में परमात्मा ने हमारे एक ऐसे सिस्टम फिट कर रखे हैं, ऐसे चैनल बना रखे हैं कि ऊपर के लोगों का सारा प्रतिक्रिया जहां जहां जिससे वो संबंधित है वो चैनल, जिसको चक्र कहते हैं, कमल कहते हैं, वो उसका पूरा विवरण आपको यहां शरीर में दिखा देता है। तो क्या बताते हैं कि वहां चित्रगुप्त ने लेखा लिया, यानी यहां की एक फिल्म वहां पहुंची और वहां उस फिल्म को ऑन करने वाला उसका नाम भी चित्र और गुप्त है। तो उसने ऑपरेटर ने वहां पहुंचते हैं तो जाते ही उसने कहा कि भाई 11 अरब वर्ष तक तो तूने राज तप किया था, 11 अरब वर्ष तक तूने राज किया, इतने में तो तेरा कोई दम लेखेला गया नहीं। दम माने शरीर ना श्वास, और लेखे लागण का तात्पर्य है कि तूने कोई भी श्वास वाला सिमरण नहीं किया, इसलिए तेरा इस जीवन का कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं। चित्रगुप्त ने लेखा लिया, पहले तो तप किया, पीछे राज किया, कहो कुछ लाए के खाली आए। पीव्रत बोला, साहब खाली आए। वहां जाकर पता लग जाता है कि तेरी तजूरी में क्या है, तेरे बैंक में कितना क्या लिखा है। यहां तो हम बकवाद करते नहीं छिकते, जब यहां से शरीर छूट जाता है जिसके ऊपर ये राजी हो रहा था, ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, ये मेरी कार है या कोठी है, ये रिश्तेदार हैं, ये मेरी सेना है, ये मेरे वजीर हैं, मंत्री हैं, और जब यह टिकट कटे यहां तक अकेला ही जल जाता है, आप सब कुछ यहीं रह जाता है। तो क्या बताते हैं कि हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। इस पूरे परिवार ने और पूरे साजबाज जो सारी उम्र तने जोड़ा था, इसको छोड़कर जब अकेली आत्मा जाएगी कहते पछाड़ खाखा रोएगी तू। इसलिए पहले ही ऐसे कर्म, ऐसी शुभ साधना, शुद्ध सत्य साधना कर ले कि चलते समय तुझे पश्चाताप ना बने। ये रोना ना बने, क्योंकि जब हम मरेंगे, हमें मरना तो हमने भी है, लेकिन हम मरेंगे फिर डरे को ना, मरण तो जैसे डर जा, पर तू मरे पाछे ना डरे, फिर ये हो जाएगा कहा भी हमने कुछ तो कर रखा, भगवान आपकी कृपा से हमारे साथ कुछ तो भक्ति है, क्योंकि ये धन आपके साथ होगा और वही पाप या आपके साथ होगा जो पूरे जीवन में किया, बाकी आपके साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर हमें इतना हौसला होगा प्रभु की कृपा से कि हे परमात्मा आपकी कृपा से कुछ तो बन गया, क्योंकि वहां तो फिर वो चीज दिखाई जोगी देगी जो आज आप कर रहे हो, और आपके साथ कुछ होगा ही नहीं। तो पीव्रत ने जाकर देखा, धर्मराज ने उसका अकाउंट दिखा दिया, और चित्रगुप्त ने देख तेरा कंप्यूटर कति खाली पड़ा, इसमें कुछ भी कौन तेरा अकाउंट, बोल क्या लाया? पीव्रत राजा कह है जी खाली आया, कुछ नहीं मिला मुझे, गलती होगी। कहते हैं धर्मराज बोला इसका काला मुंह करो। उस राजा का पृथ्वीपति राजा का कहने लगे इसका काला मुंह करो। पीव्रत बोला महाराज मेरा काला मुंह क्यों कीजिए है? धर्मराय बोला अरे भक्ति वास्ते भेजा था, भक्ति क्यों नहीं करी? करी नहीं। पीव्रत बोला जी तकसीर हुई, गलती होगी। तो धर्मराज बोला वे गलती होगी तो गदावन गलती का फल देता हूं मैं, और कौन सा और कोई काम नहीं मुझे। कबीर हरी की भक्ति बिन ये राजा रसब होवे, गली माटी लदे कुमार के भाई घास ना नीरे कोई। पुण्यात्माओं ये ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर ही हमें बताते हैं, और यदि वो परमात्मा स्वयं आकर के अपना ज्ञान प्रचार ना करे तो ये काल हमें कोई रास्ता नहीं देता। ये काल भगवान चाहता है कि ये जीवात्मा ये प्राणी जब मनुष्य शरीर प्राप्त करे उसमें या तो ये भक्ति करे नहीं, बीड़ी शराब तम्बाकू मांस सांग स्निप में चोरी डाके जारी है, और धन जोड़न में माया कोठी काठी बनाने में इससे काम लगे रहे। और यदि कोई भक्ति की चाह करता है तो नकली दूत जगह जगह बैठा दिए इसने, ये नकली संत ऋषि महर्षि और गुरु लोग, कि इन मेरे नकल काल के दूतों के पास ये जाए और वो इनको भ्रमित करके उल्टी साधना पर आधारित कर दें और ये अपना जीवन मनुष्य जीवन को बर्बाद कर जावे, फिर 84 लाख के कोल्लू वाले गेड़ में यू गिर जावे, फिर तो ना जाने कितने लाखों वर्षों के बाद इसको मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। ये तो दयालु परमात्मा स्वयं ही आते हैं कबीर भगवान, और वो आकर के एक पूरा जीवन यहां लीला करते हैं, और उस लीला के दौरान वो अपना यथार्थ ज्ञान प्रचार करते हैं। उसमें भी ये काल के दूत नकली ऋषि महर्षि गुरु संत मंडलेश्वर ये परमात्मा के आड़े आ जाते हैं, उनके साथ झगड़ा करते हैं, विरोध करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, ये झूठा है, कपटी है, जुलाहा अनपढ़ है, अशिक्षित है, ये क्या जाने सदग्रंथों को, क्या जाने वेद और गीता को, क्योंकि वेद और गीता तो संस्कृत भाषा में लिखे हैं, और ये जुलाहा है, ये अशिक्षित है, ये वेदों और गीता जी से अपरिचित है, इसकी बातों को मत मानो। लेकिन परमात्मा के सामने इन नकली लोगों की थोड़े से दिन चलती है, वो चल ली। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सन 1398 संवत 1455 में परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आए थे और वहां बनारस के अंदर एक लहर तारा नाम का सरोवर है, उसमें बहुत सुंदर कमल के फूल विकसित थे। कमल के फूल के ऊपर परमात्मा ने एक नवजात शिशु का रूप धारण किया था। आज आपको परमात्मा की प्राकट्य का वर्णन सुनाते हैं। पुण्यात्मा, आपके ऊपर कितनी रजा है परमात्मा की। हमारे जैसे दास की ड्यूटी लगाई आपकी सेवा करने की, और यहां भाई बहन बच्चे जो आते हैं पहले के लगे हुए हमारे साथ, वो सहयोग दे रहे हैं। आप कितने प्यारे हो परमात्मा को आप नहीं समझ सकते। आपके आने से पहले हम दास, हमारे बच्चे सब लग गए आपके लिए, यहां सब मैट बिछाते हैं अपने बच्चों को आने से, परमात्मा के बच्चों के आने से पहले उनका भोजन खाने की व्यवस्था करते हैं। सर्दी के अंदर आपके लिए वस्त्रों की व्यवस्था परमात्मा करवाता है, और फिर अपने बच्चों को रजाई उड़वा कर खाने खूने तक खूब छका कर रजाई उड़ा कर बिठा देता है, और फिर अमृत वर्षा करवाता है। पहले हम बालक से थे जब सांग देखने जाया करते, गामा में सांग होया करता, तो क्या अच्छी यही सर्दी का मौसम और एक पतला सा खेस कंबल होता है, जैसे कंबल टाइप सा, उसने खेस बोला है, वो खेस वट लिया करते और सभी तक ऐसा ही व्यवस्था थी। एक आधा वैसे को रजाई ले जाता, नहीं तो इसे बूंदे पाले में और कति नो रेत का मां जा गधे बैठा करते, वहां बैठते जाकर ने, और वो खेस में कभी जाडा लगे जाता, कभी जाड़ी बाजे जाती, बैठे रहते सारी रात, उसके मुंह का नहीं देखे जाते, किसी बूंदी तो बूंदी वह बातें कहते बुरे से बुरी, और सारी रात वहां बैठे रहते, और फिर दिन में काम करते, धंधा ना करते करके गड़े। तो हम उसको लगातार कई कई रात्रि देखा करते थे, और कभी भी नो नहीं अपन माती चिक तड़क ना चले, कल फिर चलेंगे, और वहां कुछ लेना देना था। और यहां तो आपको ऐसे परमात्मा कितने प्यार से रखते हैं, और यहां भी जो नहीं आ सकते वो कति कर्महीन है, और जो यहां पहुंच रहे हैं वो पुण्य आत्माएं हैं, क्योंकि यहां वो पहुंचते हैं जिनके हृदय में तड़फ है और सच्ची पुकार है परमात्मा के दरबार में, भगवान आपके बच्चे को कुछ दिन जमानत करवा लो, दो तीन दिन की जिसी कृपा हो आपकी, क्योंकि हम काल की जेल में हैं, और काल की जेल में हमारे को ये सजा मिली है धंधे करने की, ये हमारी ड्यूटी लगी है। अब वो नागा नहीं हो सकती, वो करनी पड़ेगी, हमारे बस की बात नहीं, चाहे वो किसी तरह से काल ने हमारे को बांधा है, पर बांध रखा है। तो उस काम से, वैसे ये काम करते करते हमारी मृत्यु हो जा। एक व्यक्ति नाइट सर्विस में गया, दिन में गया, नाइट सर्विस से वापस आ रहा, घर पर घना जरूरी काम, रस्ते में एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब तो उसको इतना भी टाइम नहीं था कि रात काट लो सवेरा आ जाऊं, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा, रात ना नहीं पहुंचा था और घर तक पहुंचा नहीं, उससे का काम बिगड़ गया। अब कहने का भावदास का ये नहीं है कि नाइट सर्विस में ना चलो राव जाओ मत, नहीं, इन सब बातों को याद दिलाकर प्रार्थना यही की जाती है कि भगवान मत बुलाए, चलते फिरते आता जाता भगवान बजता रहे, बस में बैठकर सफर कर रहा, काम से जा रहा, भगवान का वो सच्चा नाम लेकर के गुरु से जाप करता जा, जाप करता, और उससे फिर आपकी एक्सीडेंट बचेंगे, आपकी मृत्यु नहीं होगी, परमात्मा आपकी सो रक्षा करेगा। तो इसलिए परमात्मा की महिमा को प्रेम से सुनो। कई तो मैं देखता हूं क्यों अच्छा बढ़िया भोजन परमात्मा के दरबार का, और यहां आने के बाद कोई चिंता रहती नहीं, केवल मालिक याद रहे ऐसे, और शाम के समय देखता हूं कि खाकर दरी पकाएगा दारो अच्छा छक्का खाकर और लाके ओड कर जाए नो करें जागा, बता के फायदा फिर आने का, यार सोन खतरा था। और उनको भी जगाने के लिए भगत हमारे सेवक बाण बेटी बच्चे घूमते रहते रहो, जाग जा तू सुन ले थोड़ी बहुत देर, बताओ यह ड्यूटी भी हमने करनी पड़ा से नरबाग के लिए। खुद जो है ना इतना सचेत होना चाहिए कि एक शब्द भी काना ते टड़ना जा मालिक की वाणी का। तो इसलिए आपको आप ध्यान पूर्वक इसको सुनो, बहुत मेहर है परमात्मा की आप पे। तो आपको उस परमेश्वर की महिमा सुनाते हैं कि परमात्मा कबीर जी सारी सृष्टि के रचनहार, वो स्वयं आकर के हमें ये सच्चा ज्ञान प्रचार करते हैं, सच्चा ज्ञान देते हैं। कबीर परमेश्वर जी के बारे में हम बहुत सी दंत कथाएं, झूठी कथाएं सुना करते थे कि कबीर परमेश्वर, कबीर परमेश्वर तक कहां क्या करते, कबीर भगत फिर कवि का करते कबीर। कहते हैं कबीर जी की, कबीर जी का जो है उत्पत्ति कैसे हुई, क्या बताया करते थे, क्या लिखा करते थे वो नालायक, कि एक विधवा ब्राह्मणी थी और उसको गर्भ रह गया, वो शर्म के मारे उसको कहीं डाल आई, एक नीरू नीमा नाम के दुल्हा दंपति ने वह मिल गई, उनका पालन पोषण कर दिया। अरे कम से कम इसे ज्योतिषी हो तुम हो कि ऐसे हुआ है, तो कम से कम उस ब्राह्मणी का नाम, उसके पति का नाम, मृत का, उसके माँ बाप का कोई ठिकाना स्थान तौर लिख देते। ये बकवाद गणत मतलब है, क्योंकि ये अनजान छोरी सिद्धांत उन्होंने मान रखा है कि बिना माता पिता के कोई जन्म नहीं हो सकता। अरे भगवान पता नहीं क्या कर दे। अब जैसे वैज्ञानिक क्या बताते हैं, एक कह रहा था जी कि वैज्ञानिक तो अब ये कहते हैं बाइबल भी झूठा है, बाइबल में लिखा है कि भगवान ने 6 दिन में सृष्टि रच दी, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो वैज्ञानिक कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी पृथ्वी को बने हुए 4,32,00,000,000,000 वर्ष हो गए लगभग कुछ, और इसके बनने में बहुत समय लगता है, लाखों अरबों वर्षों में जाकर पृथ्वी बनी। पुण्यात्मा और परमात्मा के पास सारी पावर है। अब जैसे बच्चा 9 महीने में परिपक्व होता है मां के गर्भ में, और वो फिर गर्भ से बाहर आता है, ये परमात्मा का ही विधान है, उसी का दिया हुआ ये सब मटेरियल है, वो उसी की कृपा से, उसी के आदेश से, उसी के दिए हुए गुण से वो अपने आप प्रफुल्लित होता है। जैसे एक तोरी का बीज, घिया का बीज छोटा सा होता है, उसको मिट्टी में बीज दिया जाता है, उससे पौधा बनता है, बेल ऊपर आती है और फिर इतनी लंबी लंबी घिया लगती है मोटी मोटी, और उनमें बीज होता है। तो ये सब परमात्मा की ही लीला है, उसने ये भी विधान बना रखा है, ऐसे भी होगा, और परमात्मा चाहते एक मिनट में अपने वचन से भी उत्पन्न कर सकता है। जैसे अपना इतिहास बताता है कि जिस समय श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को घर से निष्कासित कर दिया था, उस समय वो गर्भवती थी और वो महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में चली गई। वहां ऋषि जी ने उस लड़की को अपनी बेटी के तुल्य वहां रखा, और वहां सीता जी ने एक पुत्र लव को जन्म दिया। एक दिन सीता जी कपड़े धोने के लिए दरिया पर गई, प्रतिदिन जाती थी। एक दिन जब वो प्रतिदिन की तरह कपड़े धोने के लिए दरिया पर जाने लगी, तो उस समय वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी अपनी ध्यान अवस्था में थे, समाधि अवस्था में थे, और वो लड़के को प्रतिदिन की तरह वैसे ही छोड़कर चली गई। और पहले वो जब जाती थी तो स्वामी जी ध्यान अवस्था में नहीं होते थे, वो कुछ पहले अपनी साधना कर लिया करते थे। उस दिन स्वामी जी उठे नहीं, समाधि में लगे रहे, और सीता जी वहां अपने पुत्र लव को छोड़ करके और ये कह के पिताजी ध्यान रखना बच्चे का, यहाँ जानवर जंगली जानवरों का भय बहुत रहता है, वो थोड़ी सी दूरी पर कपड़े धोने के लिए चली गई। वहां जाकर उसको चिंता बन गई कि कहीं पिताजी तो समाधि लगाए हैं, कोई हिंसक पशु आकर के मेरे बच्चे ने ना खा जाए। वो वापस गई और लव को उठा लाई कि बच्चे को मैं यहां साथ रख भी लूंगी, कपड़े भी धो लूंगी। उधर से महर्षि जी का जब समाधि दशा खत्म हुई, समाधि टूटी, अपनी साधना से उठे, उसने देखा कि बेटी कहकर गई थी कि पिताजी लड़के को ध्यान रखना बेटे को, तो उसने देखा लड़का तो है नहीं। ऋषि जी ने सोचा कि कोई हिंसक पशु उठा ले गया, और लड़की पहले मां दुखी है, घर से निष्कासित है, और आकर लड़के को ना पा करके वो टक्कर मार मार कर रोएगी। तो ऋषि जी ने वहां एक कुसा नाम की घास होती है, कुसा जिसको डाब बोलते हैं अपनी भाषा में, उसने उस डाब को कुसा को तोड़ा, उसको ऐसे मसल मुसल कर हाथ में रखा और अपनी वचन शक्ति से, अपनी कमाई भक्ति से, और वो एक लड़का बना दिया। उस लव का ही हम बिल्कुल मिलता जुलता, तो उसी स्थान पर लेटा दिया जहां लव लेटा करता था पालने में। सीता जी कपड़े धोकर आई, साथ में पुत्र को गोदी में लिए हुए थी, तो आकर के उसने पूछा पिताजी ये पुत्र किसका है। ऋषि जी ने देखा कि लड़की तो बच्चा साथ गोदी में ले रही थी, तो ऋषि जी ने कहा बेटा ये भी तेरा ही है, इसको भी तो प्यार दे। तब सीता जी ने कहा कि पिताजी मैं पहले तो आपको ये कहकर चली गई थी कि बच्चे को देखना, फिर मैंने सोचा कि ना जाने आप कब तक साधना करते रहोगे और इस डर से कि कहीं कोई जंगली जानवर मेरे बच्चे को ना खा जाए, पिताजी मैं वापस आके ले गई थी इसको। ऋषि जी ने कहा बेटा मैंने ये सोचा कि लड़की का लड़का किसी जानवर ने उठा लिया और यह बेटी रो रो कर मर जाएगी, इसलिए बेटा मैंने परमात्मा से अर्ज की और बेटा तेरे लिए मंगवा लिया एक। तो महान आत्मा होते हैं वो अपने सिर पे नहीं लेते कि मैंने कर दिया, इसके लिए परमात्मा की वाणी है कि मैं करे सो मारिए, तू करे सो छूटबे, इस मार में होशियार बंदे गदा बने कह ऊंटबे, हो करे जो गद्दा हुई, मैं करे सो बोकबे, और बंदा बिसारे बंदगी तस्वान है सब लोकबे। तो मेरा दास का कहने का भाव यह है, जो वैज्ञानिक जिस थ्योरी पर अटके हुए वो तो बहुत ही सेपरेट है और अंश है परमात्मा की शक्ति और सिद्धि का, उसी के द्वारा दिया गया मटेरियल है, उसी के ऊपर अनुसंधान ये करते हैं, और परमात्मा ने मटेरियल ना दिया होता तो ये वैज्ञानिक कहां से उत्पन्न होते। ये सब गॉड गिवन है, गॉड गिफ्ट है, और हम उसको बोल करके स्वयं चौधरी पाकजा हैं, ये हमारी नालायकी और अज्ञानता है। अब आप देखो परमात्मा छह दिन में सृष्टि के और एक सेकंड में सृष्टि रखते, सेकंड के भी कुछ पल में। आपने देखा होगा पहले जादूगर आया करते गामा में, मदारी बोलिया करते उनको, वो क्या करते थे जादूगर, एक छोटा सा कंचा होया करता और एक गोली कांच की, बच्चे खेला करते नू नू कर वो छोटी छोटी सी होती है, उनको क्या करता वो एक गोली मुंह में दे लेता इतनी के, और थोड़ी देर में करता हा ओड बड़ा पत्थर काट देता मुंह में, एक सेकंड में बता वो क्या चीज है, बता उसने कितनी देर लाएगी, एक सेकंड में इतनी गोली का ओड पत्थर कति चीकना, और तीन चार गोली ऐसे फेंक के थोड़ी देर में आ नोट काट काट कर पांच सात इतने मोटे मोटे पूरे वजनदार ने उठा उठा के देखा करते सब, वो कितना आगे भाई, वो तो एक छोटा सा सिंपल सा मैन है जो एक छोटी सी सिद्धि प्राप्त है जिससे उसने ये बना दिया, और उस परम पिता के पास तो असंख्य सिद्धियां हैं, उसकी शब्द में वो शक्ति है, एक सेकंड में एक अणु का वो पूरी पृथ्वी बना सकता है, वो परम जादूगर है, वो भगलीगर, परम भगलीगर है। भगलीगर माने जादूगर। तो परमात्मा के तत्व ज्ञान से अपरिचित और केवल एक ही हल्दी की गांठ पर पंसारी, वैज्ञानिक तो एक हल्दी की गांठ पर पंसारी बन बैठे हैं, लेकिन पंसारी की दुकान में बहुत सामान होता है और तभी वो दुकान चलती है। तो परमात्मा ने हर तरह की हर प्रकार का हमें जो दिया है, हम उस पर अनुसंधान करके केवल यही सोच बैठते हैं कि बस इतना ही है, नहीं। तो इसलिए हमने परमात्मा की क्रिया में अविश्वास नहीं होना चाहिए। जहां तक वैज्ञानिक बात करते हैं, वो अपने सीधा हीट एंड ट्रायल मेथड से वो भी ठीक बोल रहे हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन वो परमात्मा को नकारा करते हैं, ये उनकी महामूर्खता है। बस इतनी सी कहना चाहते। अब उस परमात्मा की कृपा से दास को यह ज्ञान हुआ। अब उस परमेश्वर ने स्वयं ही अपना ज्ञान दिया। वो कैसे यहां आया? वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम होता है, त्रेता में उनका मुनिंदर नाम और द्वापर में करुणामय से, और इसमें कलयुग में वो कबीर नाम से आते हैं। जब वो द्वापर युग में आए थे, उस समय उनका एक शिष्य बना था सुदर्शन सुपच। सुपच माने हरि, जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं ऐसे। तो वो सुपच कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, सुदर्शन उनका नाम था। तो उस समय वो बाल्मीक जाति में उत्पन्न हुए थे सुदर्शन जी, और उस समय परमात्मा कबीर जी भी वहां ऐसे ही लीला करके प्रकट हुए थे। और उस समय वो सुदर्शन जी परमात्मा कबीर जी का शिष्य हो गया था। उसके माता पिता ने प्रभु की बात को नहीं स्वीकार किया था। तो सुदर्शन जी ने प्रार्थना की थी, प्रभु मेरे माता पिता बहुत ही अच्छी आत्मा के थे, हे मालिक, एक अर्ज आपके दास की, यदि उनको कभी मनुष्य जीवन प्राप्त हो तो अपनी शरण में लेना। परमात्मा ने देखा था कि यह सुदर्शन माता पिता के मोह में, काल के जाल में फंसेगा, क्योंकि यह मोह भी एक काल की फांसी है। एक दूसरे के प्रति हमारा जो ममता बनी हुई, ये भी काल के फंसाने का एक और रस्सा है। परमात्मा ने सोचा, और तो ये निर्मल हो गया, ज्ञान से भी परिचित होगा, लेकिन मोह वाली फांसी इसके अब भी है। तब प्रभु ने कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं वचन देता हूं, मैं तेरे प्रॉमिस करता हूं कि तेरे माता पिता को मैं पार करूंगा। फिर वो खुश, वो काल से फिर बिल्कुल हट गया। तब सुदर्शन जी का छुटकारा हुआ। अपने उस प्रॉमिस के आधार पर, अपने वचनबद्ध होने के कारण, प्रभु ने सुदर्शन जी के माता पिता जो पहले बाल्मीक जाति में थे और फिर द्वापर इस कलियुग के अंदर वो ब्राह्मण और ब्राह्मण घर में जन्म हुआ दोनों का, और दोनों का फिर संयोग हुआ, वो ब्याह हुआ, उसमें ये उनका जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में। गौरी शंकर नाम था उस नीरू का और सरस्वती नाम था नीमा का। गौरी शंकर एक बहुत ही अच्छे नेक व्यक्ति थे और शिवजी के पुजारी थे। शिवजी की शिव प्राण की कथा करते थे, किसी को गुमराह नहीं करते थे। जो भी पैसा दान दक्षिणा का आ जाता था, किसी से नहीं मांगते थे, कथा करते थे। कथा के उपलक्ष में कोई दान कर जाता था, उसी से अपना खाना पीना भी चलाते थे गृहस्थी, और साथ में जो शेष बच जाता था उसको भंडारे में लगा देते थे। दुरुपयोग नहीं करते थे, जोड़ जोड़ के नहीं रखते थे, या बहका कर किसी से पैसा नहीं लेते थे। जिस कारण से पूरी बनारस में, काशी में उनकी बहुत अच्छी छवि थी। और दूसरे जो नकली ब्राह्मण थे, वो स्वार्थी लोग थे, वो उनसे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उनके पास लोग ज्यादा जाते थे और उन स्वार्थियों के पास तो कोई फंसा हुआ जाता था। इस कारण से वो ब्राह्मण, दूसरे जो गुरु लोग थे, ब्राह्मण थे, वो उस गौरी शंकर से ईर्ष्या करते थे। इस बात से मुसलमान भी परिचित थे। मुसलमानों को ये पता लग गया कि गौरी शंकर के साथ कोई भी ब्राह्मण गुरु नहीं है, क्योंकि ये गुरु लोग ही जनता को लड़ाकर मारते हैं, यही उनको गुमराह करते हैं। और ये भोली श्रद्धा गुरु, जनता गुरुओं के ऊपर इतना विश्वास करते हैं, उनके आदेश से वो ना जाने के कर डालते हैं। तो उनको ये मालूम था कि गौरी शंकर के साथ ये गुरु लोग नहीं हैं और ये अकेले हैं। और मुसलमानों को यह भी पता था कि हिंदू धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा यही कर रहा है, भगवान शिव की महिमा जगह जगह बताता है। ऐसा सोचकर उन्होंने उस गौरी शंकर को मुसलमान बनाने का इरादा किया। उसके घर पे अपना पानी छिड़क दिया, उसके वस्त्रों पर छिड़क दिया, उसके मुंह में डाल दिया दोनुआ के, और आवाज लगा दी कि भाई ये गौरी शंकर मुसलमान बन गए हैं। उधर से वो गुरु जो नकली ब्राह्मण थे उनको पता चला, वो आए वहां पर देखा कि ये तो मुसलमान उनके घरों पर पानी छिड़क चुके हैं, तो उन्होंने डंडोरा पिटवा दिया कि गौरी शंकर का हुक्का जो है ना भाईचारा बंद, वो मुसलमान बन गया है, उसे कोई बात नहीं करे, उसको गंगा में स्नान करना बंद। तो इस तरह की सारी प्रतिबंध ला दिए। अब मुसलमानों ने उसका नाम नीरू अली रख दिया, नूर अली, तो उसको नीरू कहने लगे, नूर अली। और सरस्वती का नाम नीमा रख दिया। अब पहले वो पैसा जो आता था पूजा का, उससे अपना घर का निर्वाह चलाते थे, घर चलाते थे। अब वो पैसा आना बंद हो गया, क्योंकि अब वो हिंदू शास्त्रों को छू नहीं सकता, ऐसी प्रतिबंध लगा दी। तो उन्होंने सोचा कि के काम करें, कपड़ा बुनने का कार्य शुरू कर दिया, जिस कारण से वो जुलाहे, अब जैसा कर्म कोई करेगा तो उसी नाम से वो जो है ना प्रसिद्ध हो जाता है, तो उसको जुलाहा कहने लगे, वो जुलाहे नाम से प्रसिद्ध हो गया। और उसको ने वहां से भी अपनी वहां झोपड़ी छोड़कर जुलाहों की कॉलोनी में वहां जाकर आश्रय लिया, वहां एक थोड़ी सी जगह घेर कर वहां अपना कोई मकान थोड़ी सी झोपड़ी डाल ली। अब उनकी बहुत आयु हो गई थी, 50-55 वर्ष के वो हो चुके थे, तब तक उनका कोई संतान नहीं हुई। अपरमात्मा चाहते तो उनको संतान भी दे सकते थे, लेकिन उनको संतान क्यों नहीं दी, क्योंकि परमात्मा को मालूम है, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसे का पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़िया एक ठाठा, अंत में सब बारा बटा। कि जिस पुण्यात्मा का पिछला कोई लेन देन शेष नहीं है, तो वो पुण्यात्मा है, उसको कोई संतान नहीं है, वो बड़ी भगवान आत्मा है संत मते के अनुसार, और संसारिक और काल की प्रेरणा के अनुसार संसार उसको सबसे घटिया और बदकिस्मत मानता है। तो संत मार्ग इसलिए समाज से कति विपरीत है, और इसीलिए इसमें आपसी संघर्ष भी रहता है। अब ये पुत्र पुत्रियों का हमारे साथ क्या संबंध है, एक कथा सुनाते हैं। एक ग्राम में दो भाई थे, बड़ा भाई 18 वर्ष का और छोटा भाई था जो 11-12 वर्ष का। बड़े का विवाह हो चुका था, छोटा अनमैरिड था। उनके जमीन बहुत थी, जायदाद बहुत थी, संपत्ति अच्छी थी, 30-40 एकड़ जमीन थी। एक दिन बड़े भाई और उसकी पत्नी के मन में क्या हुआ कि वो छोटा भाई बीमार हो गया, बुखार आ गया, महीने डेढ़ महीने महीने 20 दिन वो बुखार ठीक ना होया, मोती जारा निकल आया, वो सूख के चार पाई पे पड़ा सा दिखे थोड़ा सा, वैसे मरने की हालत में नहीं था, कमजोर बहुत हो गया था, माता पिता थे नहीं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तो उस भाई और उसकी पत्नी के मन में क्या दोष आ गया कि ये हमारे पैसे खर्च करवा रहा है, बीमार हो गया और ये मर जाता बढ़िया है, इसको मरवा दिया जाए। अब बीमारी का भी बहाना हो रहा है, लोग ने सोचेंगे बीमार था और सारी संपत्ति अपने अपने को मिल जाए। कहते हैं लालच नीच नकीब है इन फौजा माही, दोनों की एक सलाह होगी। वहां एक वैद्य था, उस वैद्य से मिले जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा था, उससे कहा कि तू हम आपको कुछ पैसे दे देंगे, इसको विष दे दे, ये मर जा। तो उसने भी अपने 500-400 रुपये कह दिए, भाई 500 रुपये लूंगा मैं, दे दूंगा विष। वो 500 रुपये उस वैद्य ने लेकर उसको दवाई के रूप में विष दे दिया, वो लड़का मर गया। लड़का मर गया तो कोई बात नहीं, बात खत्म हुई, कोई चर्चा चली नहीं, भी बीमार था, उठाकर कुल के लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया। अब वो सारी संपत्ति उनके पास होगी और एक वर्ष के बाद उनका एक लड़का हो गया, जब तक कोई संतान नहीं थी। अब इकलौता पुत्र और कोई संतान हो ही नहीं, इकलौता पुत्र उसको खूब खिलावें, बढ़िया आहार करें, करवावें हैं, तो गिने दिना में वो कुछ ही समय में जवान हो गया। कहने का भाव यह है कि 12-13-14 साल का होते ही उसका ब्याह कर दिया, उस लड़के का अपने बेटे का विवाह कर दिया। विवाह होते ही 6 महीने के बाद, विवाह के 6 महीने के बाद पश्चात वो लड़का बीमार हो गया। वो इतना बीमार हो गया कि उसके पिताजी ने उसके ट्रीटमेंट पर कई हजारों रुपये बर्बाद किए, लगाए। जहां भी जिसने वैद्य बताया वहां गए, महंगे से महंगी दवाई, फिर कहीं झाड़ फूक करने वालों के बारे में बताया वहां भी गए, लेकिन रोग समाप्त होने का, नष्ट होने का नाम नहीं ले रहा और बीमारी बढ़ती ही जा रही है। दोनों उस लड़के के माता पिता रो रहे हैं और पैसा भी पानी की तरह बहा रहे हैं और लड़का सूखता जा रहा है, कमजोर वीक होता जा रहा है। एक दिन दोनों उसके माता पिता व उसके पास बैठे और बच्चे के मुंह की तरफ देख रहे, उस लड़के ने कहा अपने भाई का नाम लेकर के, भाई साहब मेरी बात सुन ले, अपने पिता को, उस लड़के ने अपने पिता से कहा कि भाई साहब मेरे आखिरी वचन सुन ले। अब उनको ये पक्का हो गया कि लड़का तो मरेगा, जब हमें पहचान नहीं रहा, मुझे भाई कह रहा है बाप को। तो उसका पिताजी कहने लगा, बेटा मैं भाई नहीं तेरा पिताजी हूं। बोला, ना तू मेरा बाप है, बाप नहीं है, तू मेरा भाई है। तो वो कहता, नहीं बेटा तू पहचान नहीं रहा, मैं तेरा बाप हूं, ना तू मेरा भाई है, सुन ले मेरी बात कि मैं तेरा वो छोटा भाई था जिसको तूने विष देकर मरवाया, और कहा भाई साहब मेरा और तेरा हिसाब बराबर हो लिया, अब केवल लकड़ियां का और कफन का पैसा शेष रहता है, मैं तेरा मांगता रह गया। अब उसने क्या किया कि उसने उस बच्चे के इलाज पर आधी जमीन भी बेच डाली, जो उस लड़के का भाई का हिस्सा था वो खत्म हो चुका था, इतनी जमीन वो बेचकर उस पर ला चुका था। तब उसने सारी कहानी बताई कि मैं तेरा वो छोटे वाला भाई हूं और तेरा पुत्र बनकर आया हूं अपना हिसाब कराने के लिए, तूने मेरी संपत्ति हड़पी थी और अब मैंने अपना हिसाब बराबर हो लिया तेरा मेरा, अब मैं चलता हूं, और कफन तैयार कर ले, लकड़ियां की पैसे जो तेरे रह रहे हैं वो कर ले इकट्ठी। तब उसको बड़ी चिंता हुई भाई, उसके भाई को यानी पिता को, कहने लगा भाई साहब एक बात और सुन ले मेरी, मेरी एक शंका का समाधान कर दे, ठीक है हमने जो दुष्ट कर्म किया, हमारा आज्ञा आ गई कि जिसका बेटा मर जाए संसार में कुछ नहीं रहता, ऐसे काल की प्रेरणा का एक नियम है। भाई ठीक है, हमने तो दिशा कराया भाई, हमने भोग लिया, हम नहीं संतान मरेंगे, बोल कोई संतान होती नहीं, मैं 14-15 वर्ष हो गए तेरे बाद कोई संतान हमारे नहीं हुई, और हम तो मेरा तो कुल नष्ट भी हो गया, हमें तो सजा ठीक मिल गई कि हमने तेरे साथ विश्वासघात किया था। पर एक बात का जवाब दे दे, ये जो तेरी पत्नी है इसने के पाप कर दिया, भी अजिद्दा जलाई जाएगी, क्योंकि उस समय सती प्रथा थी कि अब तू मरेगा और इसको चिता में फूका जाएगा तेरे साथ में, इसका के दोष है। तब उसने कहा कि वो वैद कहां है जिसने मुझे विष दिया था। उस लड़के ने पूछा कि वो वैद कहां है, उसने उन्होंने बताया कि आपके एक दो वर्ष के बाद वो मर गया था। तो उन्होंने कहा कि ये वही वैद है जो मेरी पत्नी रूप में है, ईब ये अपने करनी का फल पाएगा और चिता के अंदर मेरे साथ जलेगा। पुण्यात्माओं, ये सत्य कथाएं हैं। परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि एक बेटा बीमार हो जाता है और लाखों रुपए बर्बाद करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता, उसका हमने कभी किसी जन्म में खा रखा था, उसको ले रखा था, वो बराबर कर चला। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसे का पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़िया एक ठाठा, अंत में सब बारा बाटा। अपुणात्मा ये घबराना नहीं कि ये पुत्र हो गए फिर तो हमारे ये लड़ियार आगे, बेटी होगी ये भी लेना आगे, कोई बात नहीं, ये तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अब हम परमात्मा की पावर से जुड़ गए, इनका लेन देन वो भगवान आसानी से करवाओगा, और इन बच्चों को भी राम नाम मिल गया, आपको भी मिल गया। ये परमात्मा आपके सूली को सूल में काटे में टालने लग जाएगा, क्योंकि आप परमात्मा की पावर से कनेक्टेड होगे। जैसे एक तो हम हाथ से सानी काटा करते, पशुओं का जो चारा था एक चक्र वाला गंडासा होया करे, अब भी है वैसे, सबके तो मोटरें नहीं लगी हैं, तो फिर वो हाथ से ऐसे काटा करते और एक जना उसमें वो गहरे लाया कर चारा काटने के लिए उसके प्रणाल से में एक दो जने लग कर, कितने कठिन काम था। और फिर ये अब बिजली का कनेक्शन मिल गया, बटन दाब देते हैं और उठा उठा कर वो चारा उसके डाल लगाते रहते हैं, कट 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 कर एक घंटे के अंदर ढेर लगा देता है। यानी कितना आसान हो गया वो काम, पहले चाकी पीसा करते एक घंटे तो मंडी रहती बुढ़िया, और कितना 2 किलो नहीं पिस कर देता, और अब बटन दाब देते हैं बिजली की पावर से, कोई आटा एक घंटे में ढेर सारा पीस कर रख देती है। तो ऐसे ही आपको परमात्मा की शक्ति यानी बिजली का कनेक्शन मिल गया, आप ये चिंतित ना होना। अब तो ये तो है, इसमें कोई शक नहीं, बेटा और बेटी हमारे पिछले संस्कार से जुड़े हैं, ये नो डाउट। अब हमने परमात्मा की शक्ति का सहयोग मिल गया है, ये आसानी से निमट जावांगे, हमें दुख ना होगा, कष्ट नहीं होगा। कैसे होगा? एक समय एक नगर के बाहर एक आश्रम बना हुआ था, और उस आश्रम में एक संत आता था, वहां महीना डेढ़ महीना 2 महीने वो रुकता था, फिर अपने दूसरे आश्रम में चला जाता था। जब वो संत उस ग्राम के आश्रम में आता था जो गांव से थोड़ी सी दूरी पर था, जैसे ये बरवाला से सतलोक आश्रम इतनी दूरी पर वो था, वहां बहुत से भगतजन उनके शिष्य थे। जब संत जी वहां रहने के लिए कुछ दिन आते थे, सटे करते थे, सत्संग सुनाया करते थे, तो उस समय उस गांव के जो शिष्य थे, अनुयायी थे, भगत थे, उन्होंने अपना एक नियम बना रखा था कि एक दिन का भोजन एक व्यक्ति एक दिन का भोजन कराएगा, घर से बनाकर ले जाओगा और महात्मा जी को और उसके साथ जो दो चार दस शिष्य रहते थे उनको, उनका सबका भोजन वो एक ही घर से जाता था। तो ऐसे वो प्रतिदिन प्रत्येक का नंबर बंधा हुआ था। एक दिन एक भक्त का, एक भक्तमती बहन का नंबर था और उस दिन उसका दूध फट गया। अब एक संत जी आते थे 6 महीने में, 1 वर्ष में, और उस दिन एक दिन दो दिन उनके वहां रहते हुए 1 या 2 दिन टर्न आती थी, 1 या 2 दिन टर्न आती थी। तो उसमें हरेक व्यक्ति, प्रत्येक श्रद्धालु बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाकर, बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाने की चेष्टा करता था। तो खीर का भोजन सबसे उत्तम समझते हैं, तो खीर जरूर अवश्य बना के ले जाया करते थे। तो उसने खीर बनानी थी, उधर से उसका दूध फट गया तो बड़ी चिंतित हुई। उसके एक बिल्कुल ही साथ में एक पड़ोसन ग्वांडन थी, वो विधवा थी, उसका एक लौता पुत्र था। उस बहन जो शिष्या थी भगत संत की, उस भगतमती ने जाकर सोचा कि इस पड़ोसन के दूध है, गायें दूध देती है या भैंस जो भी, और इससे दूध उधारा ले लेती हूं, इसको शाम को दे दूंगी। तो उसके पास गई के बहन कुशल मंगल पूछा। कुशल मंगल क्योंकि किसी से कोई आइटम मांगने जाता है इंसान पहले भूमिका बनाता है। उस बहन ने जाकर के, उस भक्तमती ने जाकर के उस बहन से कहा कि बहन कुशल है, बच्चे क्या कर रहे हैं? ये बात सुनकर वो विधवा बहन रोने लगी, बहुत बुरी तरह रोई। कहने लगी, बेबे बहन, मेरे से दुखी इस संसार में कोई स्त्री नहीं है, कोई औरत नहीं है। पहले तो पति की मृत्यु हुई, वो पहाड़ टूटा दुख का, और ये बच्चा अकेला मेरा एक पुत्र है। तो मैंने ये सोचा था कि बच्चा भगवान ने एक बालक दे रखा है, इसको पाल पोष कर बड़ा कर दूंगी। इस उद्देश्य से मैंने दूसरी शादी भी नहीं कराई और ना ही किसी अपने किसी कर्तव्य में मैं पीछे रही, यानी बच्चे को बहुत पिता वाला प्यार भी दिया मैंने। इसने जो भी मेरे से मांगा वो वस्तु जितनी संभव थी मैं इसको देती रही। अरीब ये इसके कारण ही बिगड़ गया, जवान हो गया, अब घर से बाहर चला जाता है, मेरी एक बात नहीं मानता, ना पता ही रात ने किस टाइम आके पड़ा है, और क्यों कहती हूं तो जवान बेटा है, डर लगे कदे ऊख चूक ना कर जा, उल्टा बोलता है, कति कहे कि नहीं मानता, आज्ञा का पालन नहीं करता। सारी रात उसके दरवाजे की तरफ देखती रहती हूं, भगवान कोई ऊख चूक ना हो जा, और ये निकम्मा शराब पीण लग गया। न्यू कहकर वह बहुत रोई। उस सत्संग में जाने वाली बहन ने कहा कि बहन तू एक बात मान मेरी, हमारे साथ सत्संग में चला कर, यूं तो तू रो रो कर मर लेगी, या सारा दिन यह बात तेरे मन में घूमती रहती है, आप मेरे साथ सत्संग में चला कर। वहां जाने से संत के आशीर्वाद से और वहां भक्तों से मिलेगी, बहन बेटियों से मिलेगी, तेरा मन कुछ परिवर्तन आएगा। तो वो लड़की कहती है कि वो लड़की विधवा थी, वो कहने लगी बहन मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारे सिर पे धनी है, तुम्हारे पति जीवित हैं, तुम्हें दुनिया कुछ नहीं कहेगी, और मेरे पति है नहीं, और मैं आगे संसग में जाने लगी क्योंकि तुम रात्रि में भी जाते हो, तो जनता ना बने के जाने के मुंह बनावेगी, मेरा तो जीना आराम कर देंगी। तब उस बहन ने काफी समझाई कि वे देख मीराबाई थी, मीराबाई का पति मर गया था, फिर भी वो मंदिर में जाने से, अपनी पूजा से और मंदिर में जाने से रुकी नहीं, रोकी नहीं रुकी। और यदि मीराबाई समाज ने देख के भक्ति ना करती तो आज ना जाने की तकुतिया बनी फिर वो समाज से संघर्ष करके परमात्मा के मार्ग पर लगी रही तो परमात्मा ने उसका सहयोग दिया। इसी प्रकार जो भक्त ईश्वर के मार्ग पर संघर्ष करता है उसके साथ भगवान रहेगा, अगर सच्चे दिल तो उसकी तड़फ है, उसको बाधा नहीं आने देगा। ठीक है, थोड़ा बहुत संघर्ष जरूर हो जाता है। और कहा, बहन अगर तेरे घर में कोई उकचुक होगी, तेरे बेटे की उकचुक होगी, ये समाज कुछ नहीं देगा तुझे। अगर तू अपने बच्चे की भी रक्षा चाहती है, तेरे यहां रोने धोने से कुछ नहीं होगा, संत शरण में चल। और प्रभु की कृपा से कहते हैं, संत शरण में आने से आई टल बला, और जय मस्तक में सूढ़ी होवा काटे में टल जा। तब तो वाने बोली, ना बेबे मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकती, तेरा शुक्रिया करती हूं आपका जो तो मुझे शिक्षा दे रही है, बाकी मैं नहीं जा सकती। उस बहन ने कहा, बहन मैं तेरे पास एक काम आई थी। तो वो बेटी जो विधवा थी वो कहने लगी, बोल बेबे बहन क्या बात, क्या काम है, मैं के काम आ सकूं हूं कि आज ऐसे ऐसे मैंने गुरुदेव का भंडारा देना था और मेरा दूध फट गया, मुझे दूध उधारा दे दे, तेरा सवेरे दे दूंगी जितना ले जाऊंगी। अब उस बहन ने दूध निकाल कर और खुट्टी का टांग रखा था पूरा का पूरा। उस लड़की ने आप देखा ना ताब देखा, न्यू का न्यू उठा कर वो दूध बाल्टी का सारा उसके पात्र में डाल दिया जो वो लेकर गई थी। तो वो बहन जो सत्संग में जाती थी उसने कहा कि बहन कुछ तो रख ले, कुछ तो रख ले, तू सारा ही डाल दिया। न्यू बड़ी बहन, मेरे जैसी पाप आत्मा और तो कुछ कर नहीं सकती, हो सकता महापुरुषों के मुंह पड़े मेरा भी उद्धार हो जाएगा, आज नहीं रखती मैं इतना भी, वो सारा ही दे दिया। अब वो बहन जो सत्संग में जाती थी वो सोचने पर विवश होगी कि अगर मेरे भी कोई मांगने आ जा दूध, सारा तो मैं भी कौन दूं, थोड़ा बहुत दे दूं, एक दो गिलास, दो चार लोटे, दो चार किलो, सारा नहीं दिया जा सकता। ये तो पुण्य आत्मा है, कुर्बान आत्मा है, ये तो सचमुच हंस है, परंतु ज्ञान बिना दुख पारी है। यह सोचती सोचती वह सत्संग में आएगी, सतगुरु के पास, संतों के पास चलेगी, क्योंकि परमात्मा कबीर जी जब आते हैं अपनी आत्माओं को कुछ भक्ति मार्ग पर लगाए रखने के लिए, वो ऐसे गुप्त आते हैं, वो ना तो अपना यथार्थ नाम बताते हैं ना ठिकाना बताते हैं, और कहते हैं भाई मैं छत महीने वहां अनुमान 200-400 किलोमीटर दूर बता दी, वहां मेरा आश्रम है वहां रहता हूं, फिर 500 और किलोमीटर दूर बताते फिर वहां रहता हूं। वह कौन जा, पहले पुराने समय में कोई कन्वेंस साधन थे कोई ना, ना कोई ऐसा टेलीफोन सिस्टम था, पूछ पाछ लें कितके रहे संत, तो ऐसे परमात्मा कल्याण करते फिरा करते थे। तो वो बहन जो सत्संग में जाती थी जिसका दूध फट गया था, वो बहुत विचार करती करती और संत का वो भोजन बना के लेगी, और मन में न्यू रख जाए वो बहन सत्संग में आ जाए तो उसका तो उद्धार होया पड़ा है। घनी अच्छी आत्मा है, बहुत पुण्य आत्मा है। अब पुण्यात्माओं ऐसे पुण्य स्वरूप होता है, अब बहाना बना उस पुण्यात्मा का भोजन परमात्मा तक पहुंचा, उसका अन्न यानी उसका दूध भगवान को भोग लगा, संत भक्तात्माओं ने भी खाया, उससे उसका पुण्य कर्म जुड़ गया परमात्मा से, उसका लिंक रस्सा बंध गया उसके गले में मालिक काला। उस ऐसे धीरे धीरे उस बहन ने सोचा, प्रेरणा दी परमात्मा ने, उस सत्संग में जाने वाली बहन ने सोचा कि आज इस बहन के पास फिर चलती हूं, वहां जावे एक घंटा बैठ के मालिक की चर्चा सुनावे। धीरे धीरे 2-3 दिन के बाद उस बहन का मन परिवर्तन हो गया जो विधवा थी।